તારીખ 6/9/1995 પૂજ્ય બેનશ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 347 અને 350 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 352
જે ત્યાગનું લક્ષણ છે એનું વર્ણન છે. ત્યાગ બે પ્રકારે છે, નિશ્ચય છે. એક મુમુક્ષુની ભૂમિકામાં જો અધ્યાસનો ત્યાગ કરવામાં આવે તો એ અધ્યાસના ત્યાગથી સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય, અને જેને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ છે એવા જ્ઞાની પુરુષોને, મુનિઓને જે રાગનો ત્યાગ થાય છે અને રાગના ત્યાગથી વિતરાગતાની ઉત્પત્તિ થાય છે એને અહીંયા ત્યાગ ધર્મ કહેવામાં આવે છે. અહીંયા જે ત્યાગ ધર્મનો વિષય છે એ મુનિ દશાને લગતો છે, અને પદ્મનંદી પંચવિષ્ટિમાંથી વ્યવહારની પ્રધાનતાથી ત્યાગનું વર્ણન અહીંયા કરેલું છે. વ્યાખ્યા યદ ક્રિયતે શ્રુતસ્ય ચતયો યદ દ્રિયતે પુસ્તકમ સ્થાનમ સંયમ સાધનાદિકમપિ પ્રત્યાસદાચાર્ય પ્રત્યાગો ઉપરાદિ નિર્મમતયા નોકિંચનો અસ્તેયતે આકિંચન્યમ ઇદમ ચ સંસ્મૃતિહરો ધર્મ સતામ સંમત. એનો અર્થ કરે છે, સમ્યક પ્રકારે શ્રુતનું વ્યાખ્યાન કરવું અને વગેરેનું પુસ્તક સ્થાન તથા પીછી કમંડલ આદિ સંયમના સાધન આપવા તે ધર્માત્માઓનો ઉત્તમ ત્યાગ ધર્મ છે. વ્યવહાર પ્રધાનતાથી વાત કરે છે, સમ્યક પ્રકારે શ્રુતનું વ્યાખ્યાન કરવું ધર્માત્મા છે. એ આચાર્યોના મુનિઓના લખેલા શાસ્ત્રો જેને દ્રવ શ્રુત કહે છે એના ઉપર સમ્યક પ્રકારે એટલે આત્માભિમુખ થઈને એ સંબંધીનું વ્યાખ્યાન કરે છે. એ ઉપરાંત મુનિરાજને શાસ્ત્રદાન દે છે, પૃથ્વી કમંડલ આદિ આપે છે, એને ત્યાગ ધર્મ કહેવામાં આવ્યો છે. ઉત્તમ પ્રકારે સમ્યક પ્રકારે શ્રુતનું વ્યાખ્યાન કરવું એનો આશય શું છે કે શ્રુતનું તાત્પર્ય તો વિતરાગતા છે, એ પોતાના વિતરાગ ભાવને દ્રઢ કરતા કરતા, વિતરાગ ભાવને આવિર્ભાવ કરતા કરતા અને વિતરાગ ભાવમાં વૃદ્ધિ કરતા કરતા જે શ્રુતનું વ્યાખ્યાન થાય છે એને સમ્યક પ્રકારે શ્રુતનું વ્યાખ્યાન કહે છે. બાકી તો શાસ્ત્રો તો અજ્ઞાનીજનો પણ વાંચે છે, પણ એને કાંઈ ઉત્તમ ત્યાગ ધર્મ કહેવાતો નથી. વાસ્તવમાં તો પોતાના સ્વરૂપમાં વિતરાગ ભાવથી લીન થાય અને અન્ય પદાર્થનો અને રાગાદીનો ગ્રહણ પર્યાયના એનું ગ્રહણ જ ન થાય, ગ્રહણ કરવાનો મમત્વ ભાવ ન થાય, ઉત્પન્ન જ ન થાય, એને ખરેખર ત્યાગ ધર્મ કહેવામાં આવે છે. અને સર્વ ગ્રંથોનું અથવા સમસ્ત શ્રુતનું એ તાત્પર્ય છે. હું શુદ્ધ આત્મા છું, શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ સિવાય આ જગતમાં મારું કાંઈ પણ નથી એવા સમ્યક શ્રદ્ધાનુમાન પૂર્વક અત્યંત નિકટ એવા શરીરમાં પણ મમત્વનો ત્યાગ, એ ત્યાગ કરીને મુનિરાજ શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપમાં રમણતા કરે છે ત્યારે એને સર્વ પ્રભાવો અને પરદ્રવ્યનો ત્યાગ કહેવામાં આવે છે. એ રીતે આત્માના ભાનપૂર્વક બધેથી મમતા ઉડી જાય એ સાચો ત્યાગ છે. અથવા વિતરાગ ભાવે શુદ્ધોપયોગથી સ્વરૂપમાં રમણતા થાય, સ્વરૂપમાં લીનતા થાય, એ જ્ઞાન જ ત્યાગ સ્વરૂપ છે. ત્યાગ કરતી વખતે પ્રત્યાખ્યાન લેવામાં આવે છે આપણે ત્યાં, અને આપણે પછખાણ પણ કહીએ છીએ અને પ્રત્યાખ્યાન પણ કહીએ છીએ. તો સમયસારની 34મી ગાથા છે કે જ્ઞાન જ પ્રત્યાખ્યાન છે. આત્માને પરદ્રવ્યનો ત્યાગ તો કહેવા માત્ર છે, ખરેખર તો આત્મામાં એનું નામ નિશાન પણ નથી. એવું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, એ સ્વરૂપમાં સ્વરૂપાકાર ઉપયોગ થાય, સ્વ આકારે ઉપયોગ થાય અને સ્વરૂપમાં લીનતા થાય, એ જ્ઞાન એ શુદ્ધોપયોગ પોતે જ ત્યાગ સ્વરૂપ છે. 34 ગાથામાં ત્યાગની એવી વાત કરી છે. સમયસારમાં જીવ અધિકારમાં અહીં આત્માના ભાનપૂર્વક મુનિ દશા વર્તતી હોય તો મુનિ રાજની ભક્તિ કરવાનો પ્રસંગ છે. પણ એમને હજી પૂર્ણ સ્થિરતા ન થતી હોય અને વિકલ્પ ઉઠે ત્યારે એ મુનિઓ પણ સત્શાસ્ત્રની શ્રુતની ભલી રીતે વ્યાખ્યા કરે. ભલી રીતે વ્યાખ્યા કરે એટલે સ્વ પરનું કલ્યાણ સદાય તે રીતે વ્યાખ્યા કરે. એને અહીંયા ત્યાગ ધર્મ કયો છે, એને ત્યાગ ધર્મ કયો છે, સ્વભાવની પ્રધાનતા લીધી છે. ત્યાં ખરેખર શાસ્ત્ર વાંચવાની ક્રિયાને કે રાગને ધર્મ કયો નથી. શાસ્ત્ર વાંચનની ક્રિયા જે જડથી થાય એને પણ ધર્મ કયો નથી, અને વિકલ્પ ઉઠે એને પણ ધર્મ કયો નથી. પરંતુ તે શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય અથવા વાંચન વખતે અંતરમાં વિતરાગ ભાવનું ગોલન થાય, વિતરાગ ભાવનું આવિર્ભાવ થાય અને એને કારણે જેટલો રાગનો અભાવ થાય એ રાગના ત્યાગને ત્યાગ કહેવામાં આવ્યો છે. અને તે ઉત્તમ ત્યાગ છે, એને જ ઉત્તમ ત્યાગ કહેવામાં આવે છે. આપણે ત્યાં આપણે દાન આપીએ છીએ તો પણ પોતાપણું રાખીને જ્યાં દાન દેવામાં આવે છે ત્યાં ખરેખર એને ઉત્તમ ત્યાગ કહેતા નથી કે ઉત્તમ દાન કહેતા નથી. મેં મારા પૈસા આવતા, મારા રૂપિયા આવતા, મારી સંપત્તિમાંથી આટલું દાન કર્યું, મારું આપ્યું એ મારાપણું રાખીને આપ્યું છે, એને ઉત્તમ ત્યાગ કહેતા નથી. નાની છે એ પ્રકારે દાન દેતા નથી. એ ચીજ મારી છે જ નહીં તો પછી કોઈ પણ ચીજનો સન્માર્ગમાં ઉપયોગ થતો હોય, સન્માર્ગની પ્રભાવનામાં ઉપયોગ થતો હોય તો ભલે થાય, એમાં મારા પણ રાખવાનો મારે કોઈ પ્રસંગ રહેતો નથી. એ રીતે એમને મમત્વના અભાવપૂર્વક વિકલ્પ આવે છે તે યથાર્થ છે, અને એને ઉત્તમ ત્યાગ ધર્મ કહેવામાં આવે છે. એ ત્યાગ ધર્મ સંબંધી સંક્ષેપમાં વ્યાખ્યાન છે. બેનશ્રી કે વચનામૃત, વચનામૃત 347 ગુજરાતીમાં 347 પાનું, હિન્દીમાં 137 છે. અંતર કી ગહેરાઈ છે, ભાવના કેસી હોની ચાહીએ. હિન્દી નહીં બોલા, હિન્દી મેં પેજ 137 છે, और प्रश्न नंबर 347 है, 347 पेज 137। अंतर की गहराई से भावना कैसी जागृत होनी चाहिए, ये भावना का वचनामृत है। और अंतर की गहराई से जिसको भावना जगे, जागृत हो जाए, उसको वो भावना सफल नहीं हो ऐसा कभी बनता नहीं है। कई ऐसी भावना सफल नहीं हो गए तो 14 ब्रह्मांड को भी शून्य होना पड़े, वो आगे 21 नंबर के वचनामृत में वो कह गए हैं। ऐसा अनंत तीर्थंकरों ने कहा है, साक्षी कितने दिया, अनंत तीर्थंकरों की साक्षी दिया है, देखो 21 नंबर के वचनामृत में है। यह अनंत तीर्थंकरों की कही हुई बात है, आखिर में शिला आखिर का वाक्य है कि चैतन्य की भावना के साथ कुदरत बंधी हुई है। आत्मा तो स्वयं भावना रूप परिणमन करता है, लेकिन कुदरत भी इसके साथ बंधी हुई है। परब्रह्म का भी सबक जोड़ दिया है कि कुदरत ने इसके साथ बंधी हुई है। ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है और यह बात अनंत तीर्थंकरों की कही हुई है, इतना साक्षी दिया है। और भावना अंतर में से उठे वो अपना अधिकार का विषय है, वो किसी का अधिकार का विषय
नहीं है।
कैसी होनी चाहिए भावना, देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक शांति चाहिए, एक आत्मा की शांति, आत्मा में से आत्मा की शांति, आत्म शांति ही चाहिए, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए। ये आत्म शांति की भावना यही वास्तव में आत्म भावना है। भावना पर सभी ज्ञानियों का बहुत वजन है। कृपालु जी ने आत्मभावना के विषय में एक अच्छा सूत्र दिया है कि आत्मभावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रहे। आत्मभावना का फल क्या, केवल ज्ञान आएगा, पूर्ण दशा आएगी। उसमें कोई मूल खाने की जगह नहीं है। मार्ग कितना सुगम और सरल है कि आप अपने स्वरूप की, आत्मस्वरूप की भावना में रहो, उसमें क्या आपत्ति है, पर उसमें कोई आंटी भूटी वाली बात भी नहीं है। शास्त्र का न्याय हो, तर्क हो, कोई दूसरी बात हो, उसमें कोई समझ पड़े नहीं पड़े, ये तो अंतर में कर सकता है। कई लोग वृद्धावस्था में ऐसे कहते हैं कि क्या करें, हमको कुछ याद नहीं रहता, हम कुछ समझ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, कोई बात नहीं। अपने आपको शांति तो चाहिए, कहां कोई ना नहीं देगा, कौन बोलेगा कि मुझे शांति नहीं चाहिए, तो अशांति चाहिए ऐसा कौन कहेगा। तो आत्म शांति की भावना में रहो, कौन सी कठिनाई है उसमें, तो कोई कठिनाई उसमें नहीं है। कोई भी जीव ये भावना कर सकता है और उसमें कोई तकलीफ पड़े ऐसी बात नहीं है। क्या है कि मुझे शांति भी चाहिए और दूसरा कुछ चाहिए तो अशांति भी चाहिए, वो आ जाती है बात। आत्मशांति के सिवा और भी कुछ चाहिए इसका मतलब कि मुझे अशांति भी चाहिए, तो एक ज्ञान में दो तलवार तो नहीं रहेगी। इसलिए लिखा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो बात पहले लिया है, मुझे मेरी आत्मशांति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। कहीं शांति दिखाई नहीं देती आत्मा के सिवा और जगह, क्या अपेक्षा है उसमें कि आत्मा को छोड़ करके कहीं और स्थान में और अन्य द्रव्य में अन्य भाव में कहीं शांति दिखाई देती नहीं है, मेरी शांति कहीं नहीं है। कहीं शांति दिखाई नहीं देती विभाव में तो आकुलता ही है, और विभाव में तो जितने भी विभाव भाव है उसमें तो शांति तो नहीं है, अशांति है। आकुलता मतलब अशांति है, विभाव में तो आकुलता ही है, अशुभ से उबकर गुजराती मशन शब्द से अशुभ से कंटा लेने उब कर लिखा है, अशुभ से कंटाला, अशुभ में तो कंटाला आएगा ही आएगा। क्यों कि जितने भी प्रकार के अशुभ भाव है उसमें आकुलता भी तीव्र होती है, और जीव का स्वभाव शांत स्वरूप होने से वो ज्यादा आकुलता तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, आकुलता बर्दाश्त करना चाहता भी नहीं है। इसलिए अशुभ से कंटाल कर शुभ में आ जाता हूं जी, और शुभ में थक कर वापिस अशुभ में चला जाता है, शुभ में भी थकान आ जाती है तो फिर अशुभ में चला जाता है। ऐसे ऐसे परिणमन करके अनंत अनंत काल बीत गया, शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ। जिसको आत्मशांति के परिणाम शुभाशुभ से रहित कोई तीसरे प्रकार का है, उसको ऐसा जिसको मालूम नहीं खबर नहीं, तो शुभ में से अशुभ में, शुभ में से थककर अशुभ में जाएगा, अशुभ से कंटा लगा करके फिर शुभ में जाएगा, शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ, दो ही बात रह जाएगी, और ऐसे अनंत काल बीता है। ऐसे अनंत अनंत काल बीत गया, अब तो मुझे बस एक शाश्वत शांति चाहिए। ये दोनों से जो थका हुआ है वो तो तीसरा रास्ता ढूंढेगा, खोजेगा, दोनों में थकान आई हो तो, एक में भी अशुभ में उत्साह हो, उमंग से होश से काम करता हो, या शुद्ध में तो तीसरे आत्मशांति में या शुद्ध भाव में आ सकेगा नहीं। शुभाशुभ रहित जो शुद्ध भाव है उसमें आत्मशांति है। अब तो मुझे बस एक शाश्वत शांति चाहिए, आत्मशांति चाहिए, और वो भी शाश्वत चाहिए, थोड़े काल के लिए आ जाए फिर अशांति हो जाए ऐसा भी कोई चाहिए नहीं। और आत्मा भी शाश्वत आत्मशांति का धाम है, पर शांति अनंत सुधाम है, पता है कितनी शांति है आत्मपद में, अनंत शांति और अमृतमयी शांति है। ये शांति में अमृत का स्वाद है, ऐसा अनुभव है कि शांति में अमृत का स्वाद आता है, बाकी अमृत नाम है। वास्तव में जो आत्मशांति है वही अमृत है, अमृत को सुधा कहते हैं, सुधा का अर्थ गठन होता है अमृत, दूसरा अर्थ होता है अमृत। अमृत में शांति आत्मा में बेहद भरी है, कितनी भरी है, बेहद भरी है। अपने ऐसे बेहद अनंत शांत स्वरूप को देखे तो पर्याय वहां नमन करने की झुक जाती है, वह अंदर में डूब जाती है, ऐसा आत्मस्वरूप है। आत्म शांति की भावना ही शांत आत्मस्वरूप की भावना है, उस स्वरूप की भावना है, और कुछ नहीं है उसमें। तो उसके सिवा और सब तो अशांति का कारण है, अशांति के भाव है, उनको क्यों चाहना है, उनकी भावना क्यों करना, ये करना चाहिए।
अब तो बस शब्द है उसके पीछे का बैकग्राउंड है।
अब तो मुझे बस, मैंने थक गया, मैं सबसे सुहासित भाव से मैं थक गया, बस हो गया, अब बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। आत्म शांति के सिवा, शाश्वत शांति के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस कह करके कहते हैं कि वो थक गया है, और जगह से थक गया है। थकान लगी हो होगी तो विराम पाने का भाव आएगा, थकान नहीं लगी तो उत्साह बना रहेगा, सुबह सुबह भाव में उत्साह बना रहेगा। जिसको सुबह सुबह में उत्साह आता है, उमंग आता है, उसका रस जिसको चढ़ता है, उसको आत्म शांति दूर है, ऐसा समझ लेना चाहिए। ग्रह दृष्टि प्रकाश में पूज्य सुगानी जी ने एक बात लिखी है कि उपयोग बाहर निकला तो जम का दूध समझो, क्योंकि उपयोग बाहर जाता है अशांति लेकर के जाता है, साथ साथ अशांति जन्म, अशांति का जन्म हो जाता है। और देवादिक प्रत्यय का उपयोग जो है उसमें भट्टी जैसा दुख लगना चाहिए। देखो भट्टी जैसा दुख लगना चाहिए, वह शुद्ध भाव है, मंद कषाय है, पर मंद कषाय में मानसिक शांति भी है, लेकिन आत्म शांति के बराबरी में, आत्म शांति की तुलना में ये जो मन की शांति है ये तो भट्टी जैसा दुखमय है। किसको समझ में आती है? जिसने आत्म शांति का अनुभव किया है उसको वो बात समझ में आती है, वरना वो बात समझ में नहीं आएगी। देवगुरु देवादिक मैंने देव गुरु शास्त्र उसमें उपयोग जाता है, क्या लगता है? भट्टी जैसा दुख लगता है। आत्मा जो शांत स्वरूप है तो शांत स्वरूप को भावना में लेना, वही आत्मभावना है। और शांति की चाह रखना, आत्म शांति की चाह रखना, वो भी आत्म शांति की भावना है। हाँ, वो बोलने में विकल्प है, परिणाम में तो निर्विकल्प भाव है। आत्म शांति है वो आत्मा का शांत निराकुल निर्विकल्प परिणाम है, वही आत्म शांति है। विकल्प है वो आत्म शांति नहीं है। विकल्प है वो आत्म शांति तो नहीं है, लेकिन आत्म शांति का विकल्प आत्म शांति में बाधक है, बाधक है।
ज्ञानी तो आत्मा के अनुभव के साथ विराम करके देखते हैं कि भक्ति का रूप है, तो क्या मोक्ष के पास में ऐसा कोई साधन नहीं है? मोक्ष के पास में कोई साधन नहीं है? પરિભ્રમણ કી ચિંતના અગર ઉસમે દિખાઈ દે યે ઉપયોગ જો બહાર ગયા વો પરિભ્રમણ લેકર કે આયા તો ક્યા ઉસસે ઉસકો દુઃખ નહીં હોગા તકા નહીં આયેગા
ઉપયોગ કા
ઉપયોગ જૈસે જ્ઞાની તો ઉપયોગ કા મિલાન કરતા મોક્ષ કા ઉપયોગ જો બહાર જાતા હૈ તો પરિભ્રમણ લેકે વાપસ આતા હૈ તો ઉસ પરિભ્રમણ કા ઇસકો દુઃખ લગા હૈ પરિભ્રમણ કા ઇસકો વેદન આયા કે એસા પરિભ્રમણ હોતા હૈ એસા દુઃખ તો વો ઉસસે મિલાન કરકે વહાં સે આ સકતા હૈ
વો
વહાં સે મિલાન કર સકતા હૈ
કહાં સે
અપના જો પરિભ્રમણ કા દુઃખ હૈ
ये दुख का किसके साथ मिलन करें
दुख के साथ जो बाहर गया
वो खुद आकुलता में ही है
दोनों में आकुलता का भाव तो सामान्य है
हाँ जो उपयोग बाहर गया वो आकुलता लेकर ही गया
और आकुलता लेके ही वापस आया
और वो उपयोग शांत हुआ तो नया आकुलता वाला उपयोग पैदा हो गया तो उसमें तो कहीं शांति नहीं है लेकिन मुमुक्ष को उसमें दुख लगे उपयोग बार जाता है या विकल्प होता है उसमें दुख लगे तो उस दुख मिटाने का या शांति प्राप्त करने का तो उपाय को खोजे ये अशांति मुझे नहीं चाहिए मुझे तो शांति चाहिए ये खोजेगा अब तो मुझे बस एक शाश्वत आत्म शांति चाहिए ऐसी भावना में तो पहले आएगा पर ऐसे इस प्रकार अंतर में गहराई से भावना बजे मुमुक्षु को बात तो मुमुक्षु की चलती है तो वस्तु जो शांत वस्तु स्वरूप कैसा है उसकी पहचान करेगा जिसको शांति चाहिए मैंने जरूरत लगी जरूरत लगी तो खोज करेगा बिना जरूरत कोई परिश्रम करता नहीं है जरूरत बिना कौन परिश्रम करेगा ना देगा हमको जरूरत नहीं है हम परिश्रम नहीं करेंगे तो मुमुक्षु को चाहिए या अपने आप में तलाश करना चाहिए कि क्या हमें हमारे में शाश्वत आत्म शांति की जरूरत लगी है क्या तो इसके पीछे हमारा प्रयत्न चलेगा और वो प्रयत्न किस प्रकार का चलेगा कि अपना जो स्वरूप है उसकी पहचान करने के विषय में उसका प्रयत्न चलेगा
इस जगह सतपुरुष आ गए
पहचानने क्या है कि सीधे आत्म स्वरूप की पहचान तो किसी को होती नहीं तो जिसने पहचाना है उसको उसकी पहचान होगी और उसका परिचय होगा फिर अपने स्वरूप का परिचय होगा स्वभाव का परिचय होगा फिर पहचान होगी ये सब प्रोसेस चलेगा मतलब जिसको आत्म शांति चाहिए है वो उस प्रकार के प्रयास में जाएगा
और उसको वर्तमान में अशांति लगी हो तो वो कोई आधार चाहिए ना उसके पास
अशांति लगे तो जहां तक अशांति नहीं लगती उसको तो बाह्य परिणाम में शुभाशुभ परिणाम में उत्साह बना रहेगा अपन गुजरात में तीन में कहते हैं कि उसको હોશ એને હોશ આવશે શુભમાં હોશ આવશે અને ક્યારેક અશુભમાં પણ એને હોશ આવશે આ ઘરમાં શાદી વગેરે કા પ્રસંગ હોતા હે હોશ તકતા કે નહીં સકતા અચ્છે સે અચ્છા સમ હોના ચાહીએ કહીં ભી કસર રહેની નહીં ચાહીએ હમારે યહાં શાદી હે તો લગના ચાહીએ કે સબ કામ અચ્છે સે અચ્છા હુઆ એસા સબ પર ઇમ્પ્રેશન करनी चाहिए ये प्रसंग तो समाज में इज्जत बढ़ाने का है हमने ये बात होती है कि प्रसंग तो समाज में इज्जत बढ़ाने का है
पहले के पोजीशन में आए पहले के पोजीशन में आए बिना आगे का एक स्टेप तक नहीं जो करना ये करना करते हैं विचार करते हैं ये करना करते हैं
वो तो है। अगर क्रम में प्रवेश किया तो सब प्रकार के ऊपर ऊपर के स्टेज सहज आते हैं, वो बात जरूर है। सब विकल्प को छोड़ करके पहला जो करने लायक है वो करना जरूरी है।
वर्तमान जिस स्थिति में खड़ा है उस स्थिति का अगर मूल्यांकन आ जाए तो बात पूरी हो जाती है।
वो स्थिति दुखदायी है, वर्तमान स्थिति में खड़ा है वो स्थिति तो दुखमय है। अगर दुखमय नहीं होती तो सुख के लिए क्यों प्रयास करता, सुख के लिए क्यों प्रवृत्ति करता। इसलिए इस सुख के लिए प्रवृत्ति जो कर रहा है जी, वो बताता है कि उसको सुख वर्तमान में है ही नहीं, दुख है। प्रवचन सार में तो वो बात वहां तक लिया है कि देव लोग के देव है वो भी सुख के लिए प्रवृत्ति करते हैं, वो भी सुख के लिए प्रवृत्ति करते हैं। वहां भी पंचेंद्रिय के सुख के लिए भी वहां पर भी प्रवृत्ति करता है। वो प्रवृत्ति स्वयं ऐसा सूचित करती है कि वर्तमान में उसको सुख नहीं है, इसलिए वो सुख के लिए प्रवृत्ति करता है। वर्तमान में दुख है उसको भी दुख है। और भावना समेत भी हो सकता है, विकल्प पूरा भावना रहित भी होता है और भावना सहित भी होता है। इसलिए भावना पर जोर है, विकल्प पर जोर नहीं है, क्योंकि ये भावना निर्विकल्प दशा में ले जाने वाली है, निर्विकल्प स्वरूप के प्रति ले जाने वाली है। हमको शाश्वत आत्म शांति चाहिए तो भावना विकल्प को शांत करके, क्योंकि विकल्प आकुलता वाला है, अशांत है, तो अशांत को मिटा करके भावना सफल होगी और शांति मिलेगी। हाँ वो बात ठीक है। विकल्प में शांति की खोज का पुरुषार्थ या प्रयत्न नहीं होता, क्योंकि भावना है तो प्रयास किए बिना रह सकती नहीं है, यहां से वो डिफ्रेंशिएट होता है। भावना ऐसे बैठे, भावना वाला ऐसे बैठा नहीं रहता, उसको अपनी भावना सफल नहीं हो वहां तक उसका तो भावना के विषय में प्रयास चलेगा, कुछ न कुछ प्रयास चलेगा। जबकि विकल्प वाला है उसका प्रयास नहीं चलता है। तो जिसको विकल्प है और भावना नहीं है तो उसका कोई प्रयास नहीं चलेगा, प्रयत्न नहीं चलेगा। विकल्प आ जाएगा, विकल्प छूट जाएगा और कोई प्रयास नहीं चलेगा। और अपना जो उदय रूप जो जीवन है उस जीवन में वो तल्लीन हो जाएगा, तन्मय हो जाएगा, कोई प्रयास उसका नहीं चलेगा। तो विकल्प वाले होते हैं उसको होता है क्या, ऐसी बात आती है तो विकल्प कर लेता है, बात पूरी हुई दूसरा उदय चालू हुआ पूरा का पूरा उसमें चला गया। और भावना वाला जो है उसको ये उदय तो आएगा, तो ऐसा विकल्प के साथ जिसकी भावना है और शांति का विकल्प भी है तो दूसरे उदय में जाएगा, उसको अशांति लगेगी, उसको खटकेगा, नहीं 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 मुझे चाहिए कि सुबह शुभ में मुझे कहीं मिल रहा नहीं, चाहे शुभ का उदय हो तो उसको असंतोष होगा, शुभ का या अशुभ का कोई भी उदय हो उसको असंतोष लगेगा, अतृप्त दशा रहेगी कि नहीं नहीं मुझे अशांति चाहिए, ये सुख मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये बात हो जाएगी। तो उसका प्रयास शांति के लिए रहेगा और ढूंढेगा खोजेगा, पर उसमें जैसे भी शांति मिले वहां तक उसकी खोज चालू रहेगी। विकल्प
मन जनित,
हाँ ठीक है, भावना है वो आत्मजनित है, वो राजवेश जनित नहीं है, वो कर्म जनित भी नहीं है, वो आत्म
चैतन्य
उत्पन्न हुई भावना है, वो चैतन्य में से, इसलिए अंतर की गहराई से लिया। देखो ना इस प्रकार अंतर में गहराई से भावना आप जगे, वैसे के वचनामृत में क्या विशेष बात है, तो गारंटी देते हैं हर जगह, वो गारंटी देते हैं, तो पहचान करो प्रतीति करो तो सच्ची शांति प्राप्त हुए बिना न रहे। ऐसा नहीं है कि आपके प्रारब्ध में होगा तो शांति मिलेगी, प्रारब्ध में नहीं होगा तो शांति नहीं मिलेगी, आपके भाग्य जैसा होगा वैसा होगा, ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन भाग्य में शांति की रेखा नहीं हो तो है
भाग्य आदि नहीं,
अरे कर्म रेखा बदलती है, भावना जगे तो कर्म की रेखा भी बदल जाएगी। कुदरत को झुकना पड़ता है ऐसा कहते हैं, कुदरत को भी झुकना पड़ता है, भावना के आगे पे आता है क्या, अगर किसी की सच्ची भावना के आगे पे आता है तो खत्म हो जाता है, चूर चूर हो जाता है, ऐसी बात है नहीं, ऐसा भी होता है, क्योंकि ऐसे परिणाम भी किसी के रविवार ध्यान के होते हैं, रविवार ध्यान के परिणाम है कि किसी की भावना को आगे आना, ये नहीं होने देना, वो नहीं होने देना, वो नहीं होने देना, तो खत्म हो जाता है। सच्ची भावना ऐसी होती है, इसलिए बोले कि चौथ ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े, तो चौथ ब्रह्मांड में तो बड़े बड़े पर्वत भी होते हैं, सबको खत्म कर देती है भावना। मतलब भावना इतनी बलवान है कि इससे बलवान जगत में कोई है ही नहीं, ऐसी बात है।
ऐसे कोमल होती है भावना,
भावना कोमल होती है, फिर भी आड़े आने वाले को तोड़ने के लिए वज्र से भी बलवान होती है। दृष्टांत देते हैं कि पानी है तो कोमल, पानी है तो कोमल, ठंडा भी है शांत भी है और कोमल भी है, लेकिन जब वो नदी के रूप में प्रवाहित होता है और इसके आगे बड़े बड़े पत्थर के चट्टान आते हैं तो उसको खत्म कर देते हैं, उसकी रेत बन जाती है, चट्टान को तोड़ देता है, बड़े बड़े पत्थर के चट्टान बीच में रास्ते में आता है तो वो पत्थर को देख करके पानी वापस नहीं मुड़ जाता, अरे रास्ते में तो बहुत बड़े बड़े पत्थर है चलो वापस चले जाए, उसको तोड़ करके आगे जाएगा, जाता है कि नहीं जाता है। ये जो नदी में बारीक रेत है वो बड़े बड़े पत्थर के चट्टान की रेत बनी हुई है, क्योंकि उसका चूर चूर कर देता है पानी। ऐसे भावना है तो कोमल, लेकिन आड़े आने वाले के लिए कोमल नहीं है, वो तो खत्म करेगी, किसी को भी खत्म कर देगी, ऐसी बात है।
और ऐसी भावना जागे उसको आत्मलब्धि भी आ जाएगी, ऐसी भावना जागे उसको आत्मलब्धि भी आ जाएगी,
हाँ वो उसकी शांति, वो भावना की प्राप्ति शांति की प्राप्ति वही काल, अरे भावना जगी वही काल लगती है, भावना जगी वही काल लगती है, और काल लगती कहाँ लेने जाने की है, काल लगने के लिए बाजार में जाना नहीं पड़ता, काल लगने उसी वक्त काल लगने आ गई, ऐसी बात है। और पुरुषार्थ भी जग गया, पांचों संग्रह हो गया। वो पूज्य बेंसरी के पास बहुत लोग जाते थे दर्शन के लिए, उसमें एक वृद्ध माँ जी थे। तो माँ जी बोले कि भाई देखो क्या करे, आपका दर्शन के लिए भी बहुत मुश्किल से आ सकते हैं, आजकल तो कान भी चला गया तो कुछ सुनाई नहीं देता आपकी बात, आंख भी ऐसी है कि कोई पढ़ाई कर नहीं सकते, स्मरण शक्ति भी चली गई, क्या करें। तो क्या प्रोत्साहन क्या दिया, तो देखो माँ जी आप तो भावना वाले हैं, क्या बोले
भावना वाले हैं,
आप तो भावना वाले हैं, भावना बढ़ाइए ना, भावना बढ़ाते जाओ, कोई जरूरत ना आंख की जरूरत है, न कान की जरूरत है, न स्मरण शक्ति की भी जरूरत है, भावना बढ़ाओ, आपकी भावना बढ़ने से भावना सफल हो जाएगी, जाओ। वो गारंटी देते हैं। हाँ, भावना जगे, पहले भावना जगे तो वस्तु का स्वरूप कैसा है उसकी पहचान करो, पहचान को भावभाषण को निश्चय को निश्चय करने की दिशा में जाएगा। भावना वाला पहचान की दिशा में जाएगा, इसका मतलब क्या है कि उसका अवलोकन चालू हो जाएगा, अवलोकन में से वेद ज्ञान होगा, वेद ज्ञान से पहचान हो जाएगी। पहचान करे, प्रतीति करे, उसमें विश्वास आ जाएगा, पहचान होगा तो अनुभवान से प्रतीति आ जाएगी कि मेरा स्वरूप ऐसा ही है। अनंत अनंत शांति मेरे ही स्वरूप में भरी है, उसका विश्वास आ जाएगा, अतुल्य विश्वास आ जाएगा, उसका तो संस्कार रह जाता है वहां। तो अनुभवान से प्रतीति आती है तो उतनी रुचि होती है आत्मशांति की, उतनी रुचि होती है तो उसी वक्त उस जीव को तो स्वभाव का संस्कार पड़ जाता है। ये एक इंप्रेशन है, जैसे एक मोहर छाप है वो कभी जाने वाली नहीं है, ऐसी योग्यता हो जाएगी। तो उसको सच्ची आत्मशांति प्राप्त हुए बिना रहेगी नहीं, उसको आत्मशांति होगी होगी और होगी, गारंटेड होगी। और अनंत तीर्थंकरों वो बात कह करके गए हैं, इतना साक्ष्य दिया है। ये 347 हुआ। अब 350 नंबर का है, अलग अलग विषय के अलग अलग वचनामृत हैं, तो मुमुक्ष को सभी पहलू से अनेक पहलू से सत्य समझने को मिलता है। ज्ञानियों के वचनामृत में ये विशेषता है, कोई शास्त्र लिखते हैं तो कोई सब्जेक्ट या कोई दृष्टिकोण पकड़ करके बात चलती है, तो उसी पहलू से सब बात समझने में वो बात रहती है वहाँ। जब ऐसे वचनामृत के जो ग्रंथ हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के वचनामृत होते हैं, उसमें ज्ञानियों ने अपना अनुभव से अनेक पहलू से सत्य पर प्रकाश लाला है, अनेक पहलू से, तो अनेक पहलू से सत्य समझने को मिलता है। ऐसा एक वचनामृत है 350। जीवों को ज्ञान और क्रिया के स्वरूप की खबर नहीं, क्या है जिसको ज्ञान और क्रिया दोनों क्या क्या चीजें इसकी खबर नहीं, मानते ऐसे हैं कि भाई अकेले ज्ञान से काम नहीं होगा, क्रिया भी करनी पड़ेगी। क्रिया में वो जड़ की क्रिया, मनवचन काय की क्रिया को लेते हैं, ज्ञान में विचार को लेते हैं। तो आम समाज में सामान्य जो धार्मिक जनता है उसमें जीवों को ज्ञान और क्रिया के स्वरूप की खबर नहीं है कि ज्ञान क्या होते हैं और ज्ञान की क्रिया क्या होती है। ज्ञान और ज्ञान की क्रिया दो फैक्टर लिया है, एक ही जगह दो फैक्टर लिया है, वो ज्ञान की सूक्ष्मता है। प्रश्न आया था ना ज्ञान की सूक्ष्मता क्या है, कि ज्ञान में ज्ञान भी है और ज्ञान की क्रिया भी है, मैंने ज्ञान में ज्ञान स्वभाव भी है और ज्ञान की क्रिया भी है। और स्वयं ज्ञान तथा क्रिया दोनों करते हैं ऐसी भ्रमणा का सेवन करते हैं। जिसको खबर नहीं है तो क्या लेते हैं कि हम जानते हैं वो हमारा ज्ञान है, और हम त्याग आदि क्रिया करते हैं, व्रतादि की क्रिया करते हैं या पूजा भक्ति की क्रिया करते हैं वो हमारी क्रिया है। तो हम तो ज्ञान भी करते हैं और क्रिया भी करते हैं। और ये सूत्र भी प्रसिद्ध है जैन संप्रदाय में कि ज्ञान क्रिया भ्रम मोक्ष, ज्ञान और क्रिया दोनों से मोक्ष होता है। क्रिया भ्रम वो द्विवचन बताते हैं व्याकरण में, वो द्विवचन मैंने दो दोनों से दो कहना नहीं पड़े। क्रिया भ्रम का मतलब दो आ गया, तो ज्ञान और क्रिया से मोक्ष होता है। तो जानकारी करना उसका नाम ज्ञान, और व्रत भक्ति या कोई क्रिया करना बाह्य क्रिया करना उसका नाम क्रिया। बस शास्त्र पढ़ना वो ज्ञान हो गया, और ये क्रिया कर लिया दोनों से मोक्ष हो जाएगा। ऐसी भ्रमणा का सेवन करते हैं, ऐसी भ्रमणा का सेवन करते हैं तो ज्ञान किसको मानते हैं वो पहले कहेंगे कि बाह्य ज्ञान को, क्या आत्मज्ञान नहीं लिया वहां? बाह्य ज्ञान मैंने सूक्ष्म वाला ज्ञान, बाह्य सूक्ष्म वाला ज्ञान जिसमें भंग भंग भेद के प्रश्नोत्तरों को, भंग भेद का प्रश्नोत्तर, तो ये कि संकेत कितने प्रकार के, ज्ञान के कितने भेद, ऐसे तत्व कितना, नौ तत्वों में कौन से हैं, अनेक प्रकार के जो भंग भेद हैं ऐसे प्रश्नोत्तरों को, और धारणा ज्ञान को, और जो भी समझ में आए उसको स्मृति में धारणा कर लिया वे ज्ञान मानते हैं, इसी को ज्ञान मानते हैं। और पर ग्रह के ग्रहण त्याग को और शरीर आदि की क्रिया को, अथवा अधिक करें तो शुभ भाव को वे क्रिया कल्पते हैं, क्रिया की कल्पना करते हैं। क्रिया में अनेक बात है कि कोई त्याग करते हैं या पूजा भक्ति करते हैं शरीर की क्रिया से, अथवा शुभ भाव करते हैं तो उसको क्रिया मान लेते हैं। तो शास्त्र का बाह्य ज्ञान को ज्ञान मानते हैं, शुभ भाव को क्रिया मानते हैं, और शुभ भाव अनुसार जो बाह्य क्रिया होती है उसको भी क्रिया मानते हैं। ये कल्पना है, ज्ञान और क्रिया के संबंध में वो कल्पना है। मुझे इतना आता है, ज्ञान में मुझे इतना समझ में आता है, और मैं ऐसी कठिन क्रियाएं करता हूं, जैसे कभी इन दिनों में उपवास करते हैं तो आहार का त्याग किया कि नहीं किया, और ज्यादा उपवास किया तो कितनी कठिन तपस्या किया। इस प्रकार वे मिथ्या संतोष में रहते हैं, ज्ञान और क्रिया दोनों के विषय में मिथ्या संतोष है। मोक्ष के लिए वो न ज्ञान है न क्रिया भी है, मोक्ष के लिए दोनों में से वो कुछ नहीं है। ज्ञान क्रिया भ्रम मोक्ष लिया ने, तो मोक्ष होने के लिए वो ज्ञान भी नहीं है और वो क्रिया भी नहीं है, मिथ्या संतोष लेते हैं। मिथ्या मैंने झूठा, अब ज्ञान किसको कहना, ज्ञायक की अनुभूति के बिना ज्ञान होता नहीं, नास्ति से लिया। अस्ति से ज्ञायक की अनुभूति वही ज्ञान है। क्या आत्मा की अनुभूति वही वही ज्ञान है, और कोई ज्ञान नहीं है। भले आत्मानुभूति वाले को शास्त्र का कुछ ज्ञान नहीं हो रहे, तो भी अनुभूति ही ज्ञान है। तीन को कौन शास्त्र ज्ञान होता है? तीन को आत्मानुभव होता है, शास्त्र ज्ञान नहीं होता है, तो भी ज्ञान है उसको। और वही सच्चा ज्ञान है, और वही ज्ञान मोक्ष के लिए काम में आने वाला ज्ञान है। वही मोक्ष का कारण रूप ज्ञान है। अनुभूति का अनुभूति मैंने अनुभव ज्ञान, स्वरूप का स्वसंवेदन रूप अनुभूति है प्रत्यक्ष। इसके बिना ज्ञान होता नहीं। और क्रिया के विषय में कहेंगे कि नायक के दृढ़ आलंबन द्वारा आत्मद्रव स्वभाव रूप से परिणमित होकर जो स्वभावभूत क्रिया होती है, उसके सिवा क्रिया
नहीं है।
नहीं, क्रिया को चारित्र कहेंगे ना, ज्ञान और चारित्र दोनों ले लो ना अपने। क्रिया को चारित्र को, चारित्र को क्रिया को, कौन सा चारित्र? कि ज्ञान स्वरूप में स्थिर हो जाए, ज्ञान स्वरूप में स्थिर हो जाए। वो स्थिरता की क्रिया वो चारित्र है। चारित्र के वर्णन में हुआ था स्थिरता अस्थिरता रूप उसकी क्रिया है। चारित्र की क्रिया क्या? स्थिरता। अस्थिरता वो विभाव क्रिया है, और स्थिरता वो स्वभाव क्रिया है। कैसे होती है? कि नायक के दृढ़ आलंबन द्वारा, नायक स्वरूप में दृढ़ता से आलंबन लेके स्थिर होना, आत्मद्रव स्वभाव रूप परिणमित हो जाना। तो शुद्ध उपयोग में पूरा द्रव स्वभाव रूप परिणमित हो जाना, ऐसी जो स्वभावभूत क्रिया है वही क्रिया है। इसके सिवा मोक्ष के लिए कोई क्रिया नहीं है। ये मोक्ष को साधने की क्रिया है। स्वभाव में स्थिर रहना वो मोक्ष के कारण रूप क्रिया है। और ऐसे ज्ञान और ऐसी क्रिया से मोक्ष होता है। तो ज्ञान क्रिया ज्ञान मोक्ष है, बाकी दूसरा कोई ज्ञान नहीं है, दूसरी कोई क्रिया
नहीं है,
ही नहीं मोक्ष के लिए। तो उद्गमी क्रिया आत्मा कहां कर सकता है? शरीर की क्रिया, कर्मद्रव की क्रिया वो आत्मा कर सकता है नहीं है। वो गुरुदेव दृष्टांत देते थे, अष्टद्रव से हम पूजा करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, तो अर्घ चढ़ाने की क्रिया आत्मा करता है कि नहीं करता है?
नहीं करता है।
नहीं करता है।
कौन करता है?
जड़ की क्रिया जड़ करता है, परमाणु की क्रिया
परमाणु
स्वयं करता है, अपने आप करता है। मैं करता हूं वो बात बिल्कुल सच्ची
नहीं।
आत्मा उसको स्पर्श भी नहीं करता। क्रिया करने का कहां सवाल रहता है? स्पर्श भी
नहीं करता।
नहीं करता।
मैं करता हूं तो
मिथ्या
होगा, दोष लग जाता है।
हाँ, ये पूजा मैंने किया, अष्टद्रव से मैं अर्घ चढ़ाया है, और आज बहुत चढ़ाया है, बड़ी पूजा की, एक पूजा, दो पूजा, तीन पूजा, एक घंटे में तीन तीन पूजा हो जाती है ना। ये जो है वहां अहम भाव रखने की बात नहीं होनी चाहिए। जड़ की क्रिया जड़ करता है, आत्मा ने क्या किया? कि अपने परिणाम के सिवा कुछ किया
नहीं है।
उसमें जो विकल्प किया, विभाव किया, शुभभाव किया, वो विभाव रूप किया क्रिया है, और ज्ञान है वो स्वभाव रूप क्रिया है। वो भी अनुभूति वाला ज्ञान वो स्वभाव रूप क्रिया है, बाकी स्वभाव रूप क्रिया है ही नहीं। पौगोलिक क्रिया आत्मा कहां कर सकता है? मतलब कर ही नहीं सकता। वो तो जड़ के कार्य रूप तो जड़ परिणमित होता है, जड़ के कार्य रूप तो जड़ स्वयं परिणमित होता है, आत्मा से जड़ के कार्य कभी नहीं होते, जड़ के कार्य आत्मा से हो सकता सकता ही नहीं है, फिर करना नहीं करने का प्रश्न रहता नहीं है। शरीर आदि के कार्य मेरे नहीं है और विभाव कार्य भी स्वरूप प्रगति नहीं है। मैं तो गायक हूं ऐसी साधक की परिणति होती है, ज्ञानी की परिणति तो ऐसे होती है। जो उत्तम चिन्ह ज्ञान है कैसा है ज्ञानी के परिणाम में कि शरीर आदि के कार्य तो मेरे नहीं और विभाव कार्य भी मेरे स्वरूप परिणति में
नहीं है,
मेरे परिणाम स्वरूप परिणति से वो भिन्न है। ज्ञान वेदन से राग का वेदन तद्दन भिन्न है और मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं। ऐसी साधक की परिणति होती है। अब मोक्ष की बात करते हैं कि सच्चे मोक्षार्थी को, जो देखो यहां मोक्षार्थी शब्द दिया है, सच्चे मोक्षार्थी को भी अपने जीवन में ऐसा घुट जाना चाहिए, घुटा जरूरी है। नानी का जैसा परिणमन है ऐसा परिणमन का रस आना चाहिए कि हमको भी ऐसा परिणमन हो। भले प्रथम स्वविकल्प रूप हो, विकल्प के साथ ऐसा घुटन हो, परंतु ऐसा पक्का निर्णय करना चाहिए, यथार्थ निर्णय करना चाहिए। पश्चात जल्दी अंतर का पुरुषार्थ करे, पहले ऐसा निर्णय होकर के पुरुषार्थ चले, पुरुषार्थ करे मतलब पुरुषार्थ चले तो जल्दी निर्णय का दर्शन हो, तो पुरुषार्थ जल्दी करेगा तो जल्दी अनुभव होगा, और देर करे तो शिथिलता करे तो देर से होगा, देर करे तो देर से हो। नहीं वो बात नहीं लिया है मंद पुरुषार्थ को देर लगेगी, तीव्र पुरुषार्थ को शीघ्र अनुभव होगा। निर्विकल्प स्वानुभूति करके स्थिरता बढ़ाते बढ़ाते जीव मोक्ष प्राप्त करता है। पहले स्वानुभूति होती है फिर स्वरूप स्थिरता, वो क्रिया बढ़ा अनुभूति वो ज्ञान है। स्थिरता बढ़ाते बढ़ाते मैंने क्रिया करते करते स्थिरता के मोक्ष में चला जाएगा जीव। इस विधि के सिवा मोक्ष प्राप्त करने की अन्य कोई विधि नहीं है, ये ज्ञान क्रिया पे मोक्ष है, इससे ही मोक्ष होता है, दूसरा कोई मोक्ष का मार्ग है ही नहीं।
भगवान जय हो परम।